وكفى وسلام على اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. الناس میں آخری بات کیا ہو رہی تھی؟ نئے لوگوں کو بتانا ہے. اب آپ لوگ جو ہے نا، تھوڑی سی کھینچائی نہیں کرنی، لیکن آپ کو کھینچنا ہے اس کو. اب آپ کھینچائی بولیں یا کھینچنا بولیں، لیکن یہ سب نے ریویو کر کے آنا ہے. اس کا کوئی انشاءاللہ کوئی سٹرکچر بنائیں گے. تو دوسرے لوگ بتائیں. محمد نعمان بھائی تو ماشاءاللہ ہر مرتبہ بتاتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی لگتا ہے طے کر دیا. ہمیں محمد نعمان بھائی ہے نا بس، عبداللہ ابراہیم بھائی ہے نا بس، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ریویو کرنے کی. تو اچھا ہے انہوں نے آپ کا لوڈ لے لیا، یہ تو صحیح نہیں ہے. آپ بھی نہیں بس ہیں، آپ دونوں ہی ہیں، تینوں ہی ہیں بس. کوئی اور بتائیں نا، کیا بات کر رہے تھے؟ جی، چھوٹے بڑے بالکل ہائی لیول ٹاپک تو پتا ہوگا. کیا کر رہے ہیں، کون سی کلاس ہے؟ جی
علی
علی، جب شہید ہو گئے تھے ان کے بعد. نہیں، آپ تھوڑا سا ایک کلاس پیچھے جا کر کے بتا رہے ہیں. تو علی رتان کے بارے میں ہم نے ویسے بات کری تھی آخری کلاس، ٹھیک ہے، لیکن بالکل آخر میں کیا بات کری، کیا ٹاپک تھا لاسٹ؟ تو آپ بتائیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا ٹاپک ہم نے شروع کر لیا تھا، صحیح. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کی پوزیشننگ صحابہ میں کہاں آتی ہے؟ کہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہیں. اور پھر ان کے بعد جو افضلیت کے حساب سے دوسری کیٹیگری آتی ہے، وہ عشرہ مبشرہ کی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ورنہ تو قرآن مجید میں سارے صحابہ کو جنت کی بشارت ہے ان کے نام لے کر کے. تو اس دوسری کیٹیگری میں آبویسلی خلفائے راشدین تو سب سے پہلے آ ہی جاتے ہیں، 4 تو وہی ہو گئے. تو پھر 5ویں، 6ٹے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں. تو یہ جو پھر ایک آرڈر ہے، اس آرڈر میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے آتے ہیں، 5th پین کو آنا چاہیے، 6th پین کو آنا چاہیے، لیکن وہ اتنا زیادہ کوئی ایسا کلیئر آرڈر نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو چوز کیا، کیونکہ ہمارے حضرت نے جو بیانات کیے تھے اس ٹاپک کے اوپر، انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بات تو شروع ہو گئی تھی، یہ تو انہوں نے جواب دے دیا، لیکن اب اس میں بھی کیا بات ہوئی تھی آخری؟ کیا ہم طلحہ رتان کے بارے میں اسپیسیفکس کرنا شروع ہو گئے تھے ڈسکس، یا ہم ایکچولی کچھ اور بات کر رہے تھے؟ کچھ جی، اچھا انہوں نے اتنا بتا دیا کچھ اور بات کر رہے تھے. کیا بات کر رہے تھے یہ بھی تو بتایا نا. سان بن ثابت رضوان کے بعد کے بارے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے جو شعر لکھے تھے. ہاں بالکل صحیح، تو میرے بھی ذہن سے نکل گیا تھا. تو اس میں اچھا چلے، اس شعر کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ یہودیوں نے یا ایون دوسرے مشرقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے جو بہت سارے شعر لکھے تھے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کا جواب دو. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جو جواب دو گے نا، تو انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جو کہ مطلب ریالٹی ہیں، نعوذ باللہ، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ پھر مکس اپ کر کے جو ہے نا، وہ ریالٹی کو جو ہے وہ جھوٹ کے ساتھ ملا کر کے اس کو ابیوز کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو تم ان کا کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، ऐसी बातों का तुम क्या करोगे? तो आसान मसाला तो तुमने जवाब दिया था कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको उसमें से ऐसे निकाल लूंगा कि पता ही नहीं चलेगा, राइट? इसको उर्दू मुहावरे से आपको समझाया था कि उर्दू में एक मुहावरा होता है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल लेना, दूध को कोई फर्क नहीं पड़ता, मक्खी भी निकल जाती है, दूध वैसा का वैसा ही रहता है, साफ सुथरा शफाफ रहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गोया कि दूध की माने शफाफ शफाफ ताहिर, ठीक है, मुताहिर, और जो गंदी मक्खी उन लोगों ने डालने की कोशिश करी है ना, उसको मैं निकाल लूंगा आपके इस तस्करे के अंदर से, और मैं आपका जबरदस्त दिफा करूंगा। और वाकई हसन मसाद उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया, ठीक है। मक्खी का बड़ा ताल्लुक है वैसे नबी अलैहिस्सलाम के शान में, गुस्ताखियां और नबी अलैहिस्सलाम के मामलात में जो खराबी करने वाले होते हैं, इनका मक्खी के बड़ा ताल्लुक है, किसी को है अंदाजा कैसे? मक्खी गंदगी में जाके बैठती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ इसका क्या था? दो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का वाकया याद है किसी को? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का क्या वाकया था मक्खियों से मुताल्लिक? ये जब वो छोटे थे ना, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और उनके ऊपर मक्खियां जैसे भिन-भिनाती हैं ना, ठीक है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, मक्खियां आ रही हैं नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने देखा कि वो नबी अलैहिस्सलाम से मक्खियों को हटा रहे हैं, ठीक है, मक्खियों को हटा रहे हैं। तो उन्होंने फिर जाग करके सुबह को अपने उस्ताद से इस ख्वाब की ताबीर पूछी कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जिन लोगों ने झूठी हदीसें बना दी है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, उनको क्या कहते हैं? झूठी हदीसें, मन घड़त घड़त हदीसें, ठीक है, मन घड़त हदीसें, ठीक है, दूसरा क्या, मौजू हदीसें, ठीक है। तो तुम उन मौजू हदीसों को नबी अलैहिस्सलाम से अलग करोगे कि नहीं, ये मौजू हदीसें हैं, ये सही हदीसें नहीं है, और सही हदीसों के ऊपर तुम काम करोगे। और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया, यानी बिल्कुल सच्चा ख्वाब था। उन्होंने फिर सही बुखारी लिखी, जो कि इससे पहले ऐसा कोई काम किसी ने किया ही नहीं था कि सिर्फ सही हदीसों को एक जगह पे जमा किया जाए, ठीक है। तो इसका भी इसके अंदर ही मक्खी का जिक्र था जी। और
पहले ये बात उनकी के हर इंसान के लिए इतना इंसाफ भी देना वो बेहतर तो हम देना मतलब हर इंसान के जो अहवाल है उतने इंसाफ भी है पर मैं
या
तो
हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट क्लास में हुई थी कि अल्लाह ताला ने, जैसे हजरत जी ने इसके अंदर फरमाया था इस बयान में, कि 1,24,000 सहाबा हैं, और अल्लाह ताला ने ना हर सहाबी को कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे अहवाल, कुछ ऐसे उनके सर्कमस्टांसेस, उनके जिंदगी के ऐसे बना दिए जो कि हमारे लिए बीकन ऑफ लाइट बन सकें, ठीक है, हमारे लिए रहनुमा बन सकें। तो किसी के कैसे हालात थे, किसी के कैसे हालात थे, तो एक मिसाल से समझाया था कि अगर माल दौलत के हिसाब से लोगों को देखें तो 4 किस्म के लोग बनते हैं। एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा माल दौलत है, लेकिन वो सब का सब कुछ करते रहते हैं अल्लाह के से। तो कोई ऐसा मिजाज वाला आदमी हो तो उसके लिए अबू बकर सिद्दीक जो है वो मिशाले हिदायत हैं। कोई ऐसा हो जिसके पास कुछ नहीं, तो ये 4 कैटेगरीज हैं वो आपके सामने बयान करी थी। तो सहाबे कराम जो है ना, हजरत अलहन के बारे में फिर अगेन तफसील में जाने से पहले एक आखिरी बात सहाबे कराम के बारे में मजीद करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि सहाबे कराम के शान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी। बहुत सारी बातें हम पीछे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी करते आए हैं, और खुलफा राशिदीन के सहाबे कराम जो है ना, ये तो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग थे और बेहतरीन बेहतरीन लोग थे। इनके ऊपर जिन लोगों ने भी बुरी बुरी बातें करी हैं, तो वो बस यानी विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सब्सटेंटिफिकेशन सब्सटेंसिएशन वट एवर, तो उन्होंने बस अपने बोझ में, अदावत में, या ये कि जाहिर है यहूदियों के असर में आकर के उनकी बातों में जाकर के इस तरह की बातें करी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलत गलत बातें जो हैं वो सहाबा कराम के बारे में आपको बुक्स में भी मिल जाती हैं, ठीक है, बुक्स में लिखी हुई मिलती हैं कि साहबा ने ये गलत काम किया, नाउज बिल्ला साहबा ने ये गलत काम किया, ठीक है। तो कोई अगर आपके सामने आके कहे कि देखो देखो बुक में ये लिखा हुआ है, फलानी जो है वो तारीख की किताब है, हिस्ट्री की बुक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उन साहबी ने ये गलत काम किया, उन साहबी नाउज ने ये गलत काम किया, तो उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे उनको? ठीक है, क्या हमारे पास इसका जवाब है? कि जब वो बुक ला के दिखाएं कि ठीक है इतनी जबरदस्त तारीख की किताब है, तुम भी इसको अच्छी तारीख की किताब मानते हो, देखो उसके अंदर सहाबी के बारे में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसा ऐसा गलत काम किया, उसके ऊपर हम क्या जवाब देंगे उनको? अब्रार भाई जवाब देंगे
अच्छा
रजी अल्लाह अनहु, तो उस किताब का फिर क्या जवाब देंगे? तो वो जो एक जवाब है बस, आसान आप कुछ कह रहे थे। इसका एक जवाब है बहुत ही छोटा सा लेकिन ऑल इनकम्पसिंग जामे, ठीक है। वो जवाब क्या है कि सहाबाए कराम जो है ना, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स से नहीं, सहाबाए कराम जो है ना वो तारीखी शख्सियत नहीं है, ठीक है, कि हम हिस्ट्री बुक से सहाबा के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेते रहे और सहाबा अच्छे थे कि सहाबा नाउज बिल्ला अच्छे नहीं थे, या सहाबा ने गलत काम किया, सहाबा ने सही काम किया। हिस्ट्री बुक्स से हमने उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी ही नहीं, ठीक है ना। हमने कहाँ से उनके बारे में नॉलेज लेनी है, कहाँ से लेनी है? कुरान अजीम शान, ठीक है। तो सहाबा जो है ये कोई हिस्टोरिक पर्सनालिटीज नहीं है, ये तारीखी शख्सियात नहीं है, ये कुरानी शख्सियात, राइट, ये कुरानी शख्सियात है। इनके बारे में कुरान मजीद में जो है ना उसको हम बिलीव करते हैं, उससे खिलाफ कोई भी बात करे हम उसको रद्द करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितनी दूसरी किताबें हैं उनकी कोई ऑथेंटिकेशन को थोड़ी है, उनकी कोई वेरिफिकेशन को थोड़ी है, किसी ने लिख दी, ठीक है। अब किस इन्फ्लुएंस में आके लिखी? अच्छा लिखी अगर सही भी, इवन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बुक्स को चेंज भी किया गया है, राइट, बुक्स को चेंज भी किया गया है और गलत गलत तरीकों से उनके चीजें उसके अंदर ऐड करके रीप्रिंटिंग करके लोगों के दरमियान, तुम्हारे तो पुराने जमाने तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होते थे, वो हाथ से लिखते थे। भाई कोई यहूदी आया, उसने जो है वो अरबी जुबान की किसी किताब को कॉपी करना शुरू किया, उसके अंदर चेंजेस कर दी, अब उसने उसकी कॉपीज बनवाई और उसके बाद लोगों में फैला दिया उसको। कोई चेक करने वाला कोई थोड़ी था, क्यों नहीं चेक करने वाले थे? क्योंकि उन किताबों के क्या हुफाज होते थे, नहीं? तारीख की किताबों के हुफाज हैं? कभी भी किसी ने हिफ्स किया तारीख की किताबों को? ठीक है, तो हिफ्स करने वाले तो कोई था ही नहीं, तो उसमें कोई तब्दीली करके आगे फॉरवर्ड कर दी तो किसको पता कि भाई इसमें पहले ऐसा नहीं था, बाद में ऐसा हो गया। कुरान मजीद के तो हुफाज हैं, आप सब माशाल्लाह इतने सारे हुफाज इधर ही बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और सिर्फ कुरान मजीद के हुफाज नहीं है, हदीस मुबारका के भी हुफाज, जो कि तारीख यानी हमारी हिस्ट्री में तो हजारों की तादाद में रहे हैं, इवन आज भी हदीस मुबारका के हुफाज मौजूद हैं, माशाल्लाह और बने चले जा रहे हैं हमारे हजरत के इदारे के अंदर, बहादुर फकीर के अंदर बुखारी शरीफ हिफ्ज करने का सिलसिला आज भी जारी है, ठीक है। और दूसरे भी ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, भगवान भाई जो है वो लेकर आए, तो वो सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के हाफिज है ना, ये और भी किताबों के, तो आज भी यानी सही मुस्लिम सही बुखारी और सहाय सित्ता के हुफाज आज भी उम्मत के अंदर मौजूद है। तो सिर्फ कुरान मजीद के हुफाज नहीं, हदीस मुबारक के हुफाज मौजूद है, तारीखी किताबों को कोई हिफ्ज नहीं करता, अक्सर तो वो इस काबिल भी नहीं होती उनको हिफ्ज किया जाए, ठीक है। इन्फ्लुएंस लोग तो पढ़ते हैं, पढ़ करके वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं उनके, उनको पता नहीं होता हकीकत क्या है, ठीक है। तो इसका सादा सा जवाब यही है कि सहाबा कराम तो कुरानी शख्सियात, ठीक है, और हदीस मुबारक से उसकी मजीद तशरीह हमें मिलती है कुरान मजीद की, तारीख की किताबों की कोई अहमियत नहीं है। जब तक वो कुरान और हदीस के मुताबिक बात करेंगी तब तो ठीक है, हम तारीख की किताब पढ़ लेंगे, जहां वो कुरान और हदीस के खिलाफ जाएंगी वी विल रिजेक्ट दैट, एब्सोल्यूट रिजेक्ट देम, कोई दिल में नरमी रखने की कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ये हकीकत है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, हमने ईमान को यानी नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर एतमाद को, राइट, हमने महबूब बना दिया तुम्हारे लिए, और इसको हमने एक ब्यूटिफाई यानी ब्यूटिफुल चीज बना करके तुम्हारे दिल के अंदर पैदा कर दिया, ईमान को नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद को, ठीक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इसयान, ठीक है, कुफर को और हर किस्म की नाफरमानी को और गुनाह को हमने तुम्हारे दिल में मकरूह बना दिया, यानी यू हेट दीज थिंग्स, राइट, कुफर और गुनाह और इसयान, इनको तुम नफरत करते हो उन चीजों से। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम गुनाह से नफरत करते हो, और कोई आकर के बोले नाउज़ुबिल्लाह साहबा ने ये गुनाह किया, साहबा ने वो गुनाह किया, वो भाई नफरत करते हो या गुनाह करते हो, ये दोनों चीजें एक साथ कमाई कैसे हो सकती है? कौन सच्चा फिर, इसको क्या हम कहेंगे कि कौन सच्चा है भाई? अल्लाह ताला सच्चे हैं या वो साहब जिन्होंने तारीख की किताब लिखी है, या जो अपने लॉजिक के मुताबिक बाद में कर रहे हैं वो सच्चे हैं? हमने तो अल्लाह को सच्चा कहना है ना, कुरान को सच्चा कहना है, वरना तो हम ही हो जाएंगे काफिर। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह राम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। ठीक है, तो इस तरह से सहाबा को हमने उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी आयत के आखिर में, उलाइका हुमुर राशिदून, ये थे जो कि बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर थे, उलाइका हुमुल मुहतदून, ये लोग थे जो कि हिदायत के ऊपर थे, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, राइट, फलाह पाने वाले, तकवा इख्तियार करने वाले और कामयाब होने वाले, फाइजून, राइट, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, राइट, ये मुहक्कक कंफर्म, ये मोमिनीन थे, उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेहतरीन लोगों में से थे ये, बेहतरीन लोग थे ये। अब कुरान मजीद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी सहाबा की तारीफें करने में, और हम आ जाए कि जी वो सहाबा नहीं है क्या, नो, कौन सच्चा कौन झूठा, इस बात है कुरान सच्चा। ठीक है, इसके बाद हम तलहा रतान के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लास खत्म होने से पहले। तो तलहा रतान के बारे में इतना तो आपको बता दिया था कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रतान के ट्राइब में से थे, जिनका जिनको बनी तमीम कहा जाता है, ठीक है, यानी कुरैश की एक सब ब्रांच जो है वो बनी तमीम थी, या शायद उनको बनी तीम भी कह सकते हैं, तमीम और तीम जो है ना ये इंटरचेंजेबली, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स में ऊपर जा करके आप देखें तो इनका बनता है सिलसिला नसब कैसे बनता है, तलहा बिन उबैदिल्ला, ठीक है, बिन के बाद फिर वो जर में आ जाएगा ना, उबैदिल्ला, सही है, और बिन उस्मान बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तीम, ठीक है, तो शायद इन्हीं के नाम की बुनियाद पर फिर कबीले का नाम, जो छोटा कबीले के ब्रांच है, बनू तमीम या बनू तीम, ठीक है, तो ये अबू बकर सिद्दीक रतान भी इसी ब्रांच से थे कुरैश की, और फिर इनका जो है ना वो सिलसिला नसब जो ऊपर और जाता है, बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई, ठीक है, तो ये काब बिन लुवई जो थे ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के भी ऊपर आते हैं, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के जो सिलसिला नसब बनता है तो उसमें भी काब बिन लुवई आते हैं, तो उस जनरेशन, ये कोई सिक्स या सेवेंथ जनरेशन बनती है, वहां जाके तलहा दतान और नबी अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब ज्वाइन हो जाता, ठीक है, तो इनकी इनके लकब जो थे तलहतुल फयाज और तलहतुल खैर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फयाज थे, बहुत ही सखी थे और खूब खर्च करते थे लोगों के ऊपर, और तलहतुल खैर भी, यानी खूब माल वाले भी थे और खर्च भी करने वाले थे, इनके माल से लोगों को खैर भी मिलती थी, माल के लिए भी अल्लाह ताला ने खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी माल अगर नेक कामों के लिए इस्तेमाल हो, नेक तरीके से, सही हलाल तरीके से हासिल किया जाए और अच्छे कामों में खर्च किया जाए, तो माल में तो बहुत खैर है, तो इनको तलहुल खैर भी लकब दिया गया। कुनियत इनकी अबू मोहम्मद कुरैशी, ये इनकी कुनियत है, अबू या के बाद जो जो आते हैं ना नाम, तो वो कुनियत कहलाती है। अच्छा, इन्होंने ऑनलाइन में एक और बात रखी थी कि उस्ताद का क्या काम होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उस्ताद का मुकाम जिसके शागिर्दों से पता चलता है बगैर। अच्छा, तलहा रजतान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य जो किताबों में हमें मिलता है वो क्या कि तलहा रजतान जो है ना, ये ट्रेडिंग का काम ज्यादा करते थे, यानी ये माल लेकर के मक्का मुकरमा से शाम जाते थे, वहां पे माल को बेचते थे और वहां से नया माल खरीद करके फिर मक्का मुकरमा लेकर के आते थे, यहाँ बेचते थे, तो इस वजह से इनके जो है वो बहुत से असवार होते रहते थे, जवानी से ही ये काम कर रहे होते थे, तो एक दफा इसी तरीके से ये बुसरा गए हुए थे, शाम का एक शहर है बुसरा, बसरा नहीं, वो तो इराक का है, ये बुसरा गए हुए थे, तो वहां पढ़ना कहते हैं कि वहां पे एक मेला सा लगा हुआ था, कार्निवल सा कुछ लगा हुआ था, तो मैं वहां पर अपनी चीजें फरोख्त कर रहा था, तो इतने में जो है ना वो एक वहां पे मकान था, उसकी खिड़की से एक राहिब ने, ठीक है, राहिब किसको कहते हैं, जो
तो सही है कि
ईसाइयों के जो स्कॉलर्स नहीं बल्कि मॉन्क्स, इनके लिए अंग्रेजी में लफ्ज आता है मॉन्क, MONK, ठीक है, ये वो है जो कि दुनिया को छोड़ करके बिल्कुल अलग थलग की जिंदगी गुजार रहे हैं, तर के दुनिया, बस वो अपने लगे हुए इबादत में लगे हुए हैं जो भी, बस अपनी जिंदगी अलग, ठीक है, शादी वादी भी नहीं करते और तनहा रहते हैं, चाहे ये किसी शहर के अंदर ही इस तरह से रहते हो, चाहे ये जंगलों में गारों में जाकर के रहें, तो उनको जो है वो राह यानी राहिब कहते हैं, राहबानी या ला राहबानी या फिर इस्लाम, इस्लाम में कोई राहबानियत नहीं है, ठीक है। तो ये ईसाइयों ने ये राहबानियत इख्तियार करी थी, उसकी वजह क्या बनी थी, किसी को पता, किसी को याद है, हमने शायद बात करी थी किसी क्लास, बहुत सारे ईसाई जो है ना वो उन्होंने रहबानियत इख्तियार कर ली थी, यानी राहिब बन गए थे, वजह उसकी क्या थी कि ये जो ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले और रिलेटिवली सही तरीके से ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले, ठीक है, तो इन्होंने जब अपनी कौम के दूसरे लोगों में दावत और तबलीग का काम किया ना, कि तुम भी ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का नबी मानो और तुम भी जो है वो गुनाहों को छोड़ो, शिर्क और बिदात को खत्म करो, ठीक है, तो इनकी कौम जो है ना वो इनके खिलाफ हो गई, ठीक है, और इन इनकी बकायदा उनके साथ जंगें हुई फिर, ठीक है, जो नेक ईसाई थे उनकी जो है वो बाकी बनी इसराइल के लोगों के साथ जंगें हुई, ठीक है, उन जंगों के अंदर जो है ना ये लोग शिकस्त खा गए, ठीक है, फिर उन्होंने कोशिश करी, फिर जंग हुई, फिर ये मारे गए, ठीक है, तो बिल आखिर इन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम जो है ना अब फाइट तो कर नहीं सकते, क्योंकि सारी आवाम जो है वो खिलाफ है, वो अपने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बोलना शुरू हो गए हैं और ये उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो गए हैं, शराब को भी हलाल कर लिया है, नऊज़ बिल्लाह सूअर को भी हलाल कर लिया, ये कर लिया है, अब हम इनसे फाइट तो नहीं कर सकते, तो फिर वो लोग जो है ना वो रिट्रीट कर गए, रिट्रीट करने का मतलब होता है कि वो उन्होंने यानी विड्रॉ कर लिया, वो अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया और बस अपनी एक खानकाह सी बनाई उधर जा करके बैठ करके इबादत शुबादत शुरू कर दी, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा काम था जिसका कि ईसा अलैहि सलाम ने तो इनको हुक्म नहीं दिया था कि तुम ऐसे करो, ठीक है ना, अल्लाह ताला का तो हुक्म नहीं था, तो अब इसमें क्या हुआ कि चूंकि अल्लाह के हुक्म के से हट करके इन्होंने एक सोर्ट ऑफ एक बिदत सी शुरू कर ली थी ना दीन में, एक नई चीज शुरू कर ली जो कि नहीं थी, ठीक है, तो फिर शैतान के लिए काम आसान हो जाता है, शैतान ने इनको फिर राहिबों को भी जो है ना गलत रास्ते के ऊपर डाल दिया, ठीक है, तो वो भी फिर सही दीन के ऊपर बाकी रहे नहीं, सही है, तो इसी तरह लेकिन उनके पास नॉलेज तो थी ना, कुछ उन्होंने ऊपर से सुना हुआ था, कुछ चीजें उन्होंने सीखी भी थी, तो इस वजह से उनको पता था कि जी क्या सही है क्या गलत है, इस हद तक कम से कम था, अमल खराब हो गया था, नॉलेज इनके पास अभी भी थी, तो इस तरह का एक राहिब जो था ना वो वहीं पे मेला जहाँ पे लगा हुआ था वहां पे उसका कोई कुटिया सी थी, घर था कोई, तो उसने ना खिड़की खोली और उसमें से सर निकाल करके जोर से बोला कि तुम में से कोई हरम का रहने वाला है, हरम का रहने वाला, ठीक है, यानी मक्का मुकर्रमा को वो हरम कह रहा, तो इवन वो लोग भी जो है ना मक्का मुकर्रमा को हरम के तौर पे मानते थे, तो हजरत तलहा जता ने उसकी जब आवाज सुनी ना, तो कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि हाँ मैं हरम का रहने वाला हूँ, यानी मैं मक्का मुकर्रमा से आया हुआ हूँ, तो उसने पूछा कि क्या अहमद का जहूर हो गया है, जहूर यानी जाहिर हो गए, क्या अहमद जाहिर हो गए, तो तलहा आजम फरमाते हैं कि मैंने तो कभी अहमद का नाम ही नहीं सुना था, अहमद कौन, ठीक है, मैंने कहा भी मैं किसी अहमद को नहीं जानता हूं, तो फिर उसने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब इनका जहूर होना है, यानी ये लोगों में जाहिर होंगे कि भाई हाँ मैं, और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ठीक है, तलहा तो फरमाते हैं कि मैंने सुन तो लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात, एक तो अहमद नाम से ही मैं वाकिफ नहीं था, तो फिर मैंने कहा अच्छा यार चलो तो देखते हैं, तो जब वो अपने सफर से वापस मक्का मुकरमा पहुंचे ना, तो वहां पे उन्होंने, उनको बात तो याद थी और बड़ी अनयूजल सी ये बात थी कि कोई इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं हरम के बारे में जहाँ के वो रहने वाले, तो उन्होंने फिर लोगों से जब पूछा ना कि कोई नई चीज हुई है मेरे पीछे, समथिंग अनयूजल इज हैपेंड, तो लोगों ने बताया कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब उन्होंने जो है ना वो, अब उनको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग जानते ही थे ना सारे, बिल्कुल तलादान भी वहीं के रहने वाले थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जो है ना वो दावा किया है कि वो अल्लाह के नबी हैं, और साथ साथ एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, कुछ आप पूछते कुछ है लेकिन बताने वाला जरा आगे बढ़ करके बताता है, तो बताने वाले को पता था कि ये जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के फैमिली के हैं, तो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी कि और अबू बकर ने उनकी बात मान भी दी है रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर ने उनकी बात मान भी दी है। बताने वाला फिर देख के बताता है ना, हाँ भाई ये अबू बकर रज़ियल्लाहु के खानदान के हैं, दोस्त हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो अब जो है ना ये अकलमंद आदमी थे, ये सीधा गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के पास कि भाई ये क्या हुआ है, और सुना है कि आपने उनकी बात मान ली है, तो क्या है इसकी तफसील। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने उनसे जो बात सुनी तो कहते हैं कि अच्छा तुमने ऐसा ऐसा देखा, ये हुआ, तो चलो मैं तुम्हें लेकर के नबी अलैहिस्सलाम के पास चलता हूँ, तुम अपना सारा वाकया उनको बताना, वो भी बहुत खुश होंगे ये बात सुनकर। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो है वो तलहा रज़ियल्लाहु को लेकर के नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, इन्होंने पूरा वाकया बताया, नबी अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए क्योंकि आप सल्लल्लाहु के बारे में आसमानी किताबों के अंदर ये तफसीलात लिखी हुई हैं, तो आप सल्लल्लाहु को पता चलेगा तो दिल खुश तो होता है ना भाई। ठीक है, बहुत खुश हुए और मुस्कुरा करके तलहा रज़ियल्लाहु को देखा और फरमाया कि हाँ भाई तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारा इरादा है बात मानने का। तो तलहा रज़ियल्लाहु जो है वो बात उन्होंने मान ली और कलमा पढ़ा और मुसलमान। ठीक है, तो ये फिर बिल्कुल इब्तदाई मुसलमान होने वालों में से एक, साबिकून अव्वलून। ठीक है, किताब बल्कि लिखा हुआ है कि फर्स्ट 8 मुस्लिम्स में थे तलहा रतान शामिल, फर्स्ट 8 रियातुल कुबरा रतान डेफरेंटली, फिर अली रतान, फिर अबू बकर सिद्दीक रतान, फिर शायद अब्दुल्ला बिन मसूद रतान, इसी तरह के 8 मुसलमान थे, उनमें से तलहा रतान भी एक थे। ठीक है, तो इसमें फिर एक नुक्ता हम रिपीट किए बगैर आगे तो नहीं जाएंगे, तो वो क्या है, आप पहले से बता रहे हैं बता दो। हाँ ये तो डेफिनेटली है, लेकिन ये मेरे जहन में नहीं था इस वक्त बोलने के लिए, लेकिन हाँ जैसे अबू बकर सिद्दीक रतान के बारे में पहले भी हम कई दफा बात कर चुके हैं ना, कि अबू बकर सिद्दीक रतान जो है वो कितने सारे यानी लोगों के ईमान में लाने का सबब बने। ठीक है, इसकी वजह से जितने लोग, वो लोग जो नेक अमाल करते रहे और उन्होंने दूसरे लोगों को इस्लाम की दावत दी और मुसलमान इस्लाम की तरफ लेकर आए, तो सबका जो सवाब है वो नेट टोटल जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को मिलता है। ठीक है, तो शायद यही वजह है कि जो नबी रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के अमाल का जो वजन किया जाएगा ना वो इतना ज्यादा होगा कि मेरी पूरी उम्मत के अमाल का वजन उससे कम हो। इस वजह से नहीं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो है वो हर वक्त बस कुरान की तिलावत करते रहते थे, या हर वक्त जो है नमाजें पढ़ते रहते थे, या हर वक्त जो है वो सदका खैरात करते रहते थे, या हर वक्त जो है वो कोई और नेकी का काम करते रहते थे। ऐसा तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता इतना ज्यादा कि उसकी पूरी उम्मत से ज्यादा सवाब मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कैसे कि भाई वो सबब बने लोगों के आने का, तो अब अल्लाह ताला इन सब का सवाब भी उनको देता है। ठीक है, अच्छा लेकिन जो नुकता आपको बताना था वो चंद दिनों पहले जुम्मे के बयान के अंदर भी आपने सुना होगा, या शायद आपने क्लास में सुना होगा, जो लोग क्लास लेते हैं जुम्मे में तो माशाल्लाह सभी मौजूद होते हैं, वो वाला क्या कि आपने देखा ना कि ये जो ईसाई राहिब था,
तो भी बदल सकते हैं आपके पास और नहीं आते हैं
हाँ ठीक है, कि इन इनके पास इल्म जो था ना पीछे से, जो इनके ऊपर वाली नस्लों से जो इल्म इन तक पहुंचा था वो कितना वेल प्रिजर्व था इनके पास, कितना वेल केप्ट था इनके पास, इतनी डिटेल्स नबी अलैहिस्सलाम के पास इनकी मौजूद थी इनके पास, कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि यारिफूनाहू कमा यारिफूना अबनाअहू, कि नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते थे कि जैसे कि कोई बाप अपने बच्चों को पहचानता है। ठीक है, यानी इतनी डिटेल एक फादर को एक मदर को पता होती है ना अपने बच्चों के बारे में। ठीक है, तो इनके पास नबी अलैहिस्सलाम की इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से आई, इनके नबियों ने इनको बताई राइट, तो इनके नबियों की बातों को इन्होंने ऐसे हिफ्ज करके रखा हुआ था और किताबों को जो है महफूज करके रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या चीज उन्होंने महफूज नहीं करी, इसको तो बड़ा महफूज किया, और हम समझते हैं कि जैसे कि ये 14 साल पहले तक महफूज था उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया होगा इन सब चीजों को, नहीं ये हमारी गलत फहमी है, इन्होंने आज भी वैसे ही महफूज करके रखा हुआ है इन तमाम फ्यूचर इवेंट्स की खबरें जो कि इनके नबियों ने हजारों साल पहले उनको बताई थी, वो सारी खबरें इनके पास आज भी मौजूद, और सारे वर्ल्ड इवेंट्स वो उसी हिसाब से कर रहे हैं, उसी हिसाब से सारे वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास भी नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हुई खबरें मौजूद हैं, इनके पास भी सारी की सारी खबरें मौजूद हैं। फर्क यह है कि वो तो खबरों को देख करके बाकायदा कर रहे हैं, और हम शायद सोए तो बैठे हुए हैं, राइट। हम अपनी खबरों को देखते ही नहीं, हम चीजों को देखते हैं ना, वर्ल्ड इवेंट्स को, तो हम उनको किसी और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भाई तुम्हारे पास हदीसें मौजूद हैं, तुम हदीसों की रोशनी में चीजों को क्यों नहीं समझते? तुम मुसलमान तो हदीसों को नहीं देख रहे, नाउज बिल्ला। जो गैर मुस्लिम है वो उनके पास जो नबियों की इंफॉर्मेशन है वो उसको देख करके ना सिर्फ चीजों को समझ रहे हैं, बल्कि दे आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग थिंग्स बेस्ड ऑन द नॉलेज, राइट। हमारा कसूर है, हमें नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों, बल्कि कुरान मजीद के अंदर भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है, उनकी लाइट में चीजों को देखना चाहिए ना। न्यूज आइटम्स और CNN.com के लाइट में हम चीजों को क्यों देख रहे हैं भाई, ठीक है। खैर, तो ये बड़ा अहम नुकता था। अच्छा, ये तो उन्होंने महफूज रखा ना अपने पास, नॉलेज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। किस चीज को उन्होंने महफूज नहीं किया? किस चीज को महफूज नहीं किया? किस चीज को प्रिजर्व नहीं किया? या ये कि प्रिजर्व तो किया लेकिन उसकी लाइट में ये एक्शंस नहीं करते? जैसे ये फ्यूचर इवेंट्स को भी उन्होंने प्रिजर्व किया लेकिन उनकी लाइट में ये एक्शंस भी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और भी इंफॉर्मेशन इनके पास थी, उसको भी, वो भी इनके पास महफूज है लेकिन उसकी लाइट में इन्होंने एक्शंस नहीं किए, वो क्या? ठीक है, ऑनलाइन तो जवाब आ गया है, तो चलो उनका भी हक बनता है, ऑनलाइन उन्होंने जवाब दे दिया है। अल्लाह के हुक्मों की भी तो इनके पास इंफॉर्मेशन है, अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये हुक्म है कैसे नहीं करो, अल्लाह का ये हुक्म कैसे करो, ठीक है, उसके मुताबिक अमल नहीं करते, अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं करते, ठीक है। और अल्लाह के हुक्मों को जो है ना खुद अमल करते हैं, जिनके पास नॉलेज है, इनके इनके जो स्कॉलर ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास नॉलेज है ना, खुद उसके ऊपर अमल करते हैं ना अपने आवाम को बताते हैं अल्लाह के हुक्मों के बारे में, कहते हैं अभी सब चलता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो चाहो करो, शराब पीना कोई बात नहीं, शराब पियो, ये करना है कोई बात नहीं, वो करो, जो चाहो तुम्हारी मर्जी है करो, अल्लाह का हुक्म नहीं बताते अपने आवाम, ठीक है। तो इस वजह से ये काफिर हुए, और इसी वजह से ये जहन्नुम के मुस्तहिक हुए, वरना अल्लाह ताला ने सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारी नॉलेज दी हुई है, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना हो गया? 4 मिनट रह गया, तो बस एक दो और बात देख लेते हैं इसमें से। सलाह जो है वो फिर कबूल इस्लाम करके, अब जो है वो उन्होंने क्या किया कबूल इस्लाम करने के बाद, क्या होता था सहाबा के साथ? अच्छा, से जैसे हमारे यहाँ लोग वापस आते हैं तो क्या होता है उनके साथ? हार पहनाते हैं ना, मिठाई लेकर के आते हैं, हार पहनाते हैं। तो सहाबा भी जब इस्लाम कबूल करते हैं तो मिठाई विठाई तो राशिद स्वीट से लेकर के आते होंगे, वो जमाने की है, लड्डू खिलाते होंगे और हार पहनाते होंगे, और फिर उसको उनको बिठाते होंगे, जी हजरत आप बैठ जाए इस कुर्सी के ऊपर, हम आपकी बात सुनेंगे, सर हिलाएंगे, आपकी बात पे अमल करेंगे, ऐसा होता था सहाबा के साथ? नहीं, सहाबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, बल्कि सहाबा को जो है वो लगती थी पिटाई, ठीक है, या जो है वो या तो फिजिकल पिटाई लगती थी हाथ से, डंडे से, ठीक है ना, पत्थरों से, ठीक है, या जो है वो जिनको फिजिकली मार नहीं सकते थे उनको वर्बल पिटाई लगाते थे नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है ना, यानी वर्बली ये अब्यूज करते थे इन सहाबा को, ठीक है। तो अब जो है जब ये मुसलमान हो गए, तो एक किताब में तो लिखा हुआ है कि उस्मान बिन उबैदुल्ला जो कि इनका सगा भाई था ना, उसी ने इनको मारना शुरू कर दिया, और दूसरी किताब में लिखा हुआ है कि नौफिल बिन खुवैलद, ये एक आदमी था, उसने क्या किया कि हजरत तलहा रहता हूँ अबू बकर सिद्दीक दोनों को, लेकिन अब अबू बकर सिद्दीक रतान जो थे ये कोई कोई मामूली आदमी के थोड़ी थे, वो तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल किस्म के इंसान थे ना उस मुआशरे के अंदर। 38 ईयर्स की एज थी उस वक्त ये मुसलमान हुए थे, 38 ईयर्स सिग्निफिकेंट एज ना, नहीं? तो उनको और तलहा रतान दोनों को जो है ना रस्सी से बांध दिया, ठीक है, और रस्सी से बांध करके जो है ना वो उनकी खुदाई करने शुरू कर, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दी, अजियत दी। तो इसी वजह से चूंकि तलहा और अबू बकर सिद्दीक रतान दोनों को, इन दोनों को जो है ना एक रस्सी से बांध करके मारा गया था ना एक ही रस्सी के अंदर, तो इनको फिर एक लकब मिल गया करीनैन का, करीनैन, कि दोनों करीब करीब थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो नौफल बिन फुवैलद ने भी कभी आता, ये भी कोई इनका मामू या कोई चचा इसी किस्म का कोई था ना, कोई रिश्तेदार ही था, और एक जगह लिखा था कि उस्मान बिन उबैद ने, जिनका सगा भाई था, उसने इसी तरीके से उनको मारना शुरू कर दिया। मर्दों ने तो किया, इनकी अपनी वालिदा मोहतरमा तो खैर नहीं कहना चाहिए था, मुसलमान नहीं हुई तो इसकी इनकी अपनी सगी माँ ने इनको मारना शुरू कर, ठीक है। तो नाम उसका साबा या सोबा लिखा हुआ है, साबा जो है उनकी माँ का नाम था। उसने क्या किया कि उसने जो है ना वो बहुत टफ टाइम दिया, और एक फरमाते हैं बिन साहबी मसूद बिन हराश कि जमाने जाहिलियत में मैं सफा और मरवा के दरमियान सही कर रहा था, क्योंकि लोग जो काफिर भी होते थे ना, तो वो काफिर भी जो है वो हज उमरे सब करते थे, ठीक है ना, वो सिर्फ म्यूजिक एंड डांसिंग ही नहीं करते थे बल्कि दोनों काम करते थे, म्यूजिक एंड डांसिंग अपनी जगह पे अपने टाइम पे, और हज उमरा अपने टाइम पे जैसे हम करते हैं दोनों साथ साथ, गुना और सवाब दोनों साथ साथ कर रहे होते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से हज भी कर रहे हैं। हत्ता के ये तो क्या, वो आपने सुना है वाकया गालिबन हजरत के जो लूत अलैहि सलाम, ठीक है, तो लूत अलैहि सलाम की कौम के ऊपर जब अल्लाह का अजाब आया था ना, कितनी बुरी कौम थी वो, कितना बुरा उन्होंने काम किया, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, और बहुत ही शदीद तरीन अजाब, इतना बुरा अजाब किसी और कौम के ऊपर नहीं आया जितना बुरा अजाब जो लूत अलैहि सलाम कौम के ऊपर। तो गालिबन उन्हीं की कौम का एक फर्द था, वो आसमान से पत्थर भी बरसे थे ना उनके ऊपर, तो एक फर्द जो था उनकी कौम का वो उमरा करने आया हुआ था मक्का मुकरमा, ठीक है ना, जिस वक्त वहां अजाब आ रहा था वो मक्का मुकरमा काबतुल्लाह का उमरा करने के लिए आया हुआ, ठीक है, तो उमरा तो नहीं लोग करते ना अभी लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, तो वो उमरा करने आया हुआ था। तो अब हरम के अंदर तो अल्लाह का अजाब नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से हरम के अंदर नहीं आता, तो वो जो पत्थर था ना, वो पत्थर जो है वो मुअल्लक रहा आसमान की ओर, लिखा है कि पहले आसमान के ऊपर वो रुका रहा, जो पत्थर इसके लिए आया था। तो जैसे ही यह शख्स उमरा करके हरम की बाउंड्री से बाहर निकला ना, वैसे ही वो पत्थर ऊपर से आया, इसको हिट किया, और ये भी अजाब का शिकार होकर मर गया। वहां पे जो लोग थे उनको क्या पता ही क्या सारा का सारा सीन था, उन्होंने जो है कब्र बनाई, इसको जो है उसके अंदर दफन कर दिया, और इसलिए कि भाई शायद इसके कुछ जानने वाले रिश्तेदार वगैरह जो है वो आए क्लेम करते, भाई हमारा कोई रिश्तेदार तुमने तो नहीं देखा यहाँ पे, तो उस वक्त जो है ना वो हमें कोई पहचान होनी चाहिए, ताकि भाई वो होता है ना डेड बॉडी चाहिए होती है लोगों को, लाश चाहिए होती है, ताकि अपने इलाके में जाकर उसको दफन करें। तो उन्होंने निशानी के तौर पर वहां पर ना एक तरीके से कोई दरख्त का तना भी जो है ना वो कब्र के अंदर डाल दिया, कि भाई इससे निशानी रहेगी, यहाँ पे ये बंदा आया था, अनक्लेम्ड किस्म का बंदा था, हम नहीं जानते उसको, तो अब कोई आया तो नहीं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम एक दफा सहाबा किराम के साथ वहां से गुजर रहे थे, गालबन जोराना का वो इलाका था, यहाँ से जाते हैं ना जब रियाज से, तो हरम की बाउंड्री शुरू होने से पहले जोराना का इलाका, तो वहां से जब नबी अलैहिस्सलाम गुजरे तो सहाबों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था कि उसको यहाँ पे आके पत्थर लगा था, और वो यहाँ पे मदफून है, और उसकी कब्र के अंदर एक दरख्त का तना भी है, ठीक है। सहाबा फरमाते हैं कि हमने अपने हमें एतमाद तो था नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर, यानी कोई शक वक था, लेकिन होता ना ये ईमान को यकीन में बदलने के लिए हमने बाकायदा उस खबर को खोला कि आप सच में फरमा रहे हैं, तो देखें तो जरा, तो देखा तो वाकई उसके अंदर जो है वो चीज मौजूद थी जिसका आप सच में, ठीक है जी,
सोने
सोने की छड़ी थी। अच्छा, चलो सोने की छड़ी, हाँ वैसे दरख्त का तना तो डिकम्पोज होकर के पता नहीं फॉसिलाइज हो चुका होगा, सोने की छड़ी के ज्यादा हदीस में ऐसी ही सोने की छड़ी लिखी है, तो बिल्कुल सही, ठीक है। बहरहाल तो ये जो है ना वो सही कर रहे थे, तो मैंने एक नौजवान को देखा कि जिसके हाथ रस्सी के जरिए उसके गले के साथ बंधे हुए थे, और उसके पीछे एक औरत चल रही थी, यानी उनके हाथ जो है वो गले के पीछे ऐसे बांधे हुए थे रस्सी से, और औरत चल रही थी जो उनको बुरे बुरे अल्फाज कह रही थी, गालियां दे रही थी ना। मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि ये तलहा है जिसने कि ना हमारा दीन छोड़ दिया, बेदीन हो गया है, जाहिर है उनका पुराना दीन छोड़ करके नया दीन, और पीछे पीछे जो है ना वो इसकी माँ चल रही है, और वो इसे लोगों के सामने बेइज्जत कर रही है, ताकि ये अपने दीन में जो उनको मुशरिकीन का जो दीन था उसके अंदर ये वापस आ जाए, तो ऐसे ऐसे हालात से सहाबा गुजरे हैं, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने उनको वो मुकाम अता फरमाया है जो कि कोई उनके बाद आने वाला नहीं पा सकता, चाहे कितनी ही इबादतें कर ले, क्योंकि ऐसी तकलीफें और ऐसी मुश्किल सिचुएशन कभी किसी दूसरे को नहीं मिल सकती जो कि सहाबा को मिली थी। हम जब दुनिया में मुसलमान हो या जो भी हो, इस्लाम इस्टेब्लिश हो गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये सब कुछ हो चुका ना, अब हम दुनिया में आए तो अब तो एक इस्टेब्लिश चीज है, पके पकाए फल हम खा रहे होते हैं। सहाबा के साथ ऐसे के थोड़ी था। ठीक है, अल्लाह ताला हमें सहाबा से शदीद मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह जजाक
अरे
आले वाला नहीं बोलते हैं पॉलिटिकली फिट, आले भी इल्म आना होते
वाला नहीं करेंगे और अगर
हाँ, उसकी एक क्लियर वजह तो यही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बोला हुआ था कि भाई हमने इस वक्त रेजिस्ट नहीं करना। ठीक है, तो इवन दो वो रेजिस्ट कर सकते थे फिजिकली, वो भी ताकतवर थे, उनके पास भी असला होता था, उनके पास भी माल दौलत भी होता था, कुछ होता था, लेकिन ऑर्डर्स नहीं थे। और वो ईमान जो लाए थे ना, ईमान की डेफिनेशन ही ये कि जो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बस यही करना है। अब अगर वो उसके हट करके कोई अपनी अकल से कोई काम करना शुरू, तो भाई ईमान क्या, आपको क्या क्या करा आपने फिर उसके बाद में, ईमान क्या चीज होती है। तो ईमान की डेफिनेशन जो है ना, सिर्फ कलमा पढ़ना हम समझते हैं, एक चंद अल्फाज पढ़ लिए तो मुसलमान हो गए, भाई इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम की कंप्लीट एतमाद, आप की बात मानना। अब वो बात तो यही थी कि भाई अभी रेजिस्ट नहीं करना, अगर कभी गलती हो भी जाती थी ना तो वो फौरन माफी मांगे, वो गलती हो गई, मेरा इरादा नहीं था करने का, गलती हो गई। जैसे एक दफा सात बिन वकास होता है, उन्होंने एक दफा रेजिस्ट कर दिया था, मार दिया था किसी को, ठीक है, लेकिन वो गलती से हो गया था, वो जानबूझ के नहीं किया था इस तरह।
Recording stopped.